అంతే కదా, ఇంతేలాగా బోధలేరు కదమ్మ. హరే కృష్ణ. కడతాలో జాయిగా దో తీన్ కడతా. వెన్ డిడ్ యూ కమ్? Like Mauritius? You want to go back to Mauritius? He likes Mauritius. Kaltal ko bhi jana hai.
జనరంజ Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Parvati, Radha Parvati, Radhe. Jai Sita Radha Chalanuman, Jai Sita Radha Chalanuman. Hare ba, hare ba, hare ba, hare ba. Hare ba, hare ba, hare ba, hare ba.
Bhajan kare, bhajan kare.
Yaso Mati Nandana Rajabhano Nagara Gokula Ranjana Kana Yasa Mati Nandana Rajabhano Nagara Gokula Ranjana Kana Gopipadana dhana madana manohara Gopipadana dhana madana manohara Kaya damana vidhana Kaya damana vidhana Amala harina maniya bilasa Amala harina maniya bilasa Pinna pura dhara navani nagara Kanti badan navata Pinna pura dhara navani nagara Kanti badan navata Gajajana palanda sirakulana sana Gajajana palanda sirakulana sana Nandaka dhanurathwala Nandaka dana rakhwana Govinda madhava navanita taskara Govinda madhava navanita taskara Sandana nandaka pana Sandananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Pasanala Yamuna Tatachara Gopi Pasanala Yachara Sita Tuttamaya Rasala Sita Tepamaya Shira Dhamala Pabunna Vandana Tupala Shira Dhamala Pabunna Vandana Tupala Bhakti Vinada Shraya Bhakti Vinoda Shraya Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Hari Bhagavan, 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 Hari
Jai Om Vishnupad Paramahansa Paivjagacharya Jumayin Vishwa Abhe Chana Bhakti Danda Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki श्री श्री गौणताय की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर प्रेमानंद, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड बॉडीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड बॉडीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड बॉडीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड श्री गौरांगा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, उठा, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. तो यहाँ हिंदी में क्लास है, अंग्रेजी में. तो यहाँ रोज भगवान की अलग अलग लीलाओं का स्मरण हो रहा है, उनकी चर्चा हो रही है. तो आज के क्लास के लिए हमने भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के 2 लीलाओं को चुना है. एक है यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार, दूसरा है सुदामा ब्राह्मण का उद्धार. तो श्लोक बोर्ड में लिखा है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, इसका हम सब भक्तों को लाभ उठाना चाहिए.
वाणी गुणानुकथन श्रवण कथाया, हस्त च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया, हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया, हस्त च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना.
और कोई पढ़ेगा?
Yeah.
शब्द अर्थ
वाणी शब्द बोलने की शक्ति गुण अनुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त श्रवणों कान कथायां आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में हस्तों हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर मनः मन तव आपका पादयोः चरण कमलों का नः हमारी स्मृत्यां ध्यान में लगी स्मृति में शिरः सिर तव आपका निवास जगत प्रणामे चूंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए भोग के लिए नहीं। दृष्टि ही देखने की शक्ति सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में अस्तु इसी तरह लगी रहे। भवतनु नाम जो आपसे अभिन्न है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भागवत 7:5-23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत्पथ मूर्खता पूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राह्या, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 11:14-21। ये अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है।
आप लोगों अच्छा लगा अनुवाद। मैंने श्लोक इसलिए चुना है क्योंकि मेरे ख्याल से जन्माष्टमी की असली तैयारी इस श्लोक के संदेश का पालन है भक्तों के लिए। ओम ज्ञातिमिरन्तरस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरन्मीलितं मनोविष्टम् वन्देऽहं श्रीगुरु। गुरुन वैष्णव श्रीरूपां सगरतां सहगनं रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सहभूतं विनाशयितं श्रीराधाकृष्णपदं सहगनं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधा कृष्ण धाता राधे वृंदावनेश्वरी वंचा कल्पतरुण जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम अस्तो च कर्मासु मनस्तव पादयो नः स्मृत्यां शिरस्तावा निवास जगत प्रणाम दृष्टि सतम दर्शन स्यु भवंत तनुनाम। तो जैसे मैंने कहा इस श्लोक का संदेश भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय हम भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और कल आप पढ़ोगे कि भगवान प्रकट हुए अपने दिव्यम रूप में जन्म कर्म चा में दिव्यम। जो व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरा प्रकट और अप्रकट होना दोनों दिव्यम है वो मेरे धाम लौट सकता है। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने दिव्यम रूप में उनके माता पिता वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत भारी तपस्या की थी। उनका एक ही भाव था क्या कि उन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो और भगवान ने उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार किया। और आप पढ़ते हो कि जब भगवान प्रकट भी हुए तब वे दिव्य रूप के साथ प्रकट हुए थे और जब माता पिता ने विनियत पुनिमय थे लघु राधा कैन यू ट्राई यू कैन अंडरस्टैंड हिम दैट वन डिवोटी फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान नो नो पुनीत नो ही इज रशियन एनीवन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिंदी टू रशियन राकेश ओ टेक दिस डिवोटी फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान ही फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान मुस्लिम कंट्री तम प्रभु तम 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 रशियन। भगवान प्रकट हुए थे अपने दिव्य रूप में और जब माता पिता ने निवेदन किया सादे बच्चे का रूप ग्रहण कर लो तो उन्होंने तुरंत वो भी स्वीकार कर लिया। और आप भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो और पढ़ते हो कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग असुरों का वध किया। और इस विषय पर ठाकुर भक्तिनोद जी ने कहा है कि जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं जिसमें भगवान ने अलग अलग असुरों का वध किया उसके द्वारा हमारे जो अलग अलग अनर्थस हैं वो दूर होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की लीलाओं का को सुनने से हमारे भौतिक जो आकर्षण है वो समाप्त होता है। और ठाकुर भक्तिनोद जी ने अलग अलग लीला का खास ज्ञान दिया है कौन सी असुर के वध से किस प्रकार का अनर्थ दूर होता है। तो आज जो हमने श्लोक चुना है ये है भागवतम के 10वें स्कंद का 10वें अध्याय। जैसे हमने कहा आज भगवान की दो लीलाओं का वर्णन करेंगे समय हुआ तो नलकुवर और मणिग्रीवा का और सुदामा ब्राह्मण का। तो ठाकुर भक्तियों जी कहते हैं इस लीला को सुनकर हमारे में जो घमंड गौरव आ जाता है, कई बार हम सोचते हैं कि हमने ऊंचे खानदान में जन्म लिया या बड़े पढ़े लिखे हैं, तो ये जो घमंड है ये जो मिट जाता है क्या इस लीला को सुनकर। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये भी हैं बिल्कुल दिव्यम, और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला को प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो नलकुंवर और मणिग्रीव कौन थे? कुबेर के पुत्र थे और शिव जी के भक्त बन गए थे। तो उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो गई थी जिसके द्वारा वो कैलाश पर्वत में प्रवेश कर पाए और वहां आध्यात्मिकता के भाव को बढ़ाने के बजाय मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ। जब महान संत नारद मुनि वहां से निकले और वरुणी शराब के नशे में थे, जब महान संत नारद मुनि वहां पहुंचे तो ये इतने बेशरम थे, इतने शराब के नशे में थे कि उन्होंने अपने नंगे शरीर को भी ढका नहीं। स्त्रियों ने ढक लिया पर इन्होंने नहीं ढका। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनका मुझे उद्धार करने दो। ये कहा गया है इन श्लोकों में कि कई बार व्यक्ति जब धनी खानदान में जन्म ले या उसके बाद बहुत एक शिक्षा हो या खूबसूरती हो तो हम घमंडित बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा असली कर्तव्य क्या होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया और ये श्राप दिया क्या कि आप पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। पर कहा श्राप के साथ एक वर भी दिया। तो प्रभुपाद इन श्लोकों में साधु संघ के महत्व की चर्चा करते हैं। साधु संघ सर्वसा सखाया लाभ मात्र साधु संघ सर्वस्व दिखाया कि इन दो बेटों को हालांकि वो बुरी संगत में गिर गए थे, हालांकि बुरे कार्यों में जुड़े थे, किसी प्रकार से उन्हें साधु की संगत प्राप्त हुई, नारद मुनि की संगत प्राप्त हुई। तो नारद मुनि ने क्या उन्हें श्राप दिया, श्राप दिया कि तुम बन जाओगे वृक्ष। पर कहा नंद महाराज के आंगन में। ये तो बड़ा अच्छा श्राप है, अगर आप भक्तों को दिया जाए मेरे ख्याल से आप सब स्वीकार कर लोगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस लीला में कि संत जो है जब श्राप भी देता है तो भक्त की भलाई के लिए देता है, संत कभी डांटे भी तो भक्त की भलाई के लिए देता है। तो इन्हें श्राप दिया था कि तुम वृक्ष बनोगे नंद महाराज के आंगन में कितने समय के लिए, देवताओं के 100 वर्षों के लिए, 100 celestial years। हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर होते हैं। पर साथ में यह वर दिया था कि देवताओं के 100 वर्षों की समाप्ति पर आपको भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। और ये दो बेटे कुबेर के इतने नशे में थे और ये भी नहीं समझ पाए कि संत के सामने किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। नंगे थे, पेड़ भी नंगे रहते हैं वैसे देखा जाए, तो ये वृक्ष बन गए नंद महाराज के आंगन में। तो 100 साल जब बीते, भगवान पिछले अध्याय में आपने भगवान की दामोदर लीला पढ़ी, दामोदर लीला में आपने देखा कि भगवान के विषय में कईयों ने शिकायत की। क्या शिकायत की? कि आपका बेटा आकर हमारे घरों में चुरा लेता है दूध मक्खन घी वगैरह। तो यशोदा माता ने पहले तो ये इनकार किया, मेरा बेटा आपके घर में आके क्यों चोरी करेगा, मेरे घर में कुछ कमी है किसी चीज की। हालांकि उनके मन में अंदर ये भय रहता था कि शायद पड़ोस के घरों में ज्यादा अच्छा दूध मक्खन हो, ये उनके मन में भाव था। पर फिर अंत में यशोदा माता ने बेटे को की शरारत को कम करने के लिए उन्हें बांधने का प्रयास किया, और बांधने का जब प्रयास किया सब रस्सियों को जोड़ दिया, सब रस्सियों को जोड़कर भी रस्सियां मिलकर दो उंगली छोड़ी निकली थी। इससे आचार्यों ने यह कहा है, इसका अर्थ यह है कि भगवान को समझने के लिए एक तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, ये नहीं कि प्रयास करे बिना अब भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर लोगे। कई बार संत महात्मा आते हैं कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो, प्रयास करना नहीं चाहते, सोचते हैं कि आशीर्वाद के बल पर भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रयास करेंगे तो हम भगवान को उनकी कृपा से समझ पाएंगे। तो भगवान ने जब देखा कि मेरी माँ इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, जब भी सफल नहीं हो रही, भगवान ने क्या उन्हें बांधने दिया, और किससे बांधा था, मोटर उखल, हाँ उखल के साथ। तो भगवान को याद था कि उनके प्रिय भक्त नारद ने ये वचन दिया है नलकर और मणिग्रीव को कि उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन भी प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के वचनों को पूरा करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी से हर प्रकार का वर लगभग प्राप्त कर लिया था। पहले तो जब हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने के लिए तो देवता अत्यंत दुखी हो गए थे, और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी जब गए पहुंचे, जब हिरण्यकशिपु की इतनी गहरी तपस्या थी कि उनके पूरे शरीर में चींटियां चल रही थी, चींटियों ने उनके सारे चमड़े को खा लिया था, जब भी वो अपने टोज पर अंगूठे पर खड़े होकर आकाश की तरफ देखते हुए तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि ये तपस्या क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, तो जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं भी ये वर तो नहीं दे सकता कि नृत्य के सामने नहीं झुकोगे, तो हिरण्यकश्यपु ने हर प्रकार के वर लगभग प्राप्त कर लिया था, दिन में ना आकाश में, दिन में रात में ना आकाश में ना जल में ना पृथ्वी पर। पर अंत में भगवान ने नृसिंहदेव जी के रूप में अपने आप को प्रकट किया, ब्रह्मा के सारे वरों का पालन किया और उसका वध, हिरण्यकश्यपु का वध भी हुआ। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा था कि हिरण्यकश्यपु के वध होने के बाद भगवान ने ब्रह्मा से कहा, डोंट गिव सच बेनिडिक्शन इन फ्यूचर, ऐसा हुआ भविष्य में नहीं देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। तो भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है, पर भगवान ने ऐसे कहा था ब्रह्मा को। तो भगवान को भी याद था कि उनके प्रिय भक्त नारद ने ये शब्द दिया, वचन दिया है क्या, कि इन दो का को भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान को उखल के से तो बांधा हुआ था, तो भगवान आगे बढ़े, उखल को दो पेड़ों के बीच में फंसा दिया और फिर खींचा जोर से, और जब जोर से खींचा तो क्या, ये जो दो यमुना अर्जुन वृक्ष थे वो गिरे, और साथ में नारद मुनि ने इन दो बेटों को ये खास वर दिया था कि उन्हें याद रहेगा क्या क्या गलतियां उन्होंने की थी। तो इन दो पेड़ों से, वृक्षों से क्या कौन निकले, नलकुंवर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र, और ये दो पुत्र निकले पेड़ों से, और उन्होंने सबसे पहले परम भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो तो आप देखोगे कि शुरू से अंत तक अलग अलग भक्तों के द्वारा परम भगवान का गुणगान हो रहा है। और आप ये भी देखोगे कि हालांकि अलग अलग भक्त गुणगान कर रहे हैं पर हरि का भाव थोड़ा अलग है। तो ये भी कहा जाता है भागवतम इज नथिंग बट अ प्रेयर बुक, जिसमें भगवान के अलग अलग भक्त भगवान के अलग अलग गुणों का अवतार का गुणगान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी करते हैं भगवान के अनेक गुणों का वर्णन। उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि अद्य पुराना पुरुषम नवयोनम च, अब हो सबसे पुराने पुरुष, पर आप देखते हो कैसे बिल्कुल एक युवक के समान। तो कुबेर के दो पुत्रों ने परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया और गुणों के वर्णन के पश्चात उन्होंने नारद मुनि जिनके गुरु थे उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि नारद मुनि जी की असीम कृपा से ही उन्हें आज परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। और जब ये दो यमन अर्जुन पेड़ घिरे तो इतनी जोर से आवाज आई कि पड़ोस में और घर में सब घबरा गए। यशोदा माता रसोई में थी, नंद महाराज भी पड़ोस में थे। तो नंद महाराज और यशोदा माई सब आए भागे भागे। जब आप कोई भारी आवाज कुछ गिरता है तो आप भी घबरा जाते हो देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि दो यमुनार्जुन पेड़ वृक्ष गिरे हैं और उनके बिल्कुल पास कौन है, उनका बेटा है। तो वो बड़े खुश हुए, बेटा बच गया हमारा। उनको डर था कि ये पेड़ उन पर तो नहीं गिरा। फिर नंद महाराज ने पूछा कईयों से ये पेड़ गिरे कैसे, कोई खास तूफान भी नहीं आया, ये पेड़ गिरे कैसे। तो दूसरे जो ग्वाले थे भगवान के मित्र, उन्होंने कहा कि दो ये पेड़ तो आपके बेटे ने गिराए हैं। और नंद महाराज ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, मेरा छोटा बेटा कैसे इतने दो भारी पेड़ों को नीचे गिराएगा, कभी ये संभव नहीं है। और जब यशोदा माता को कहा गया कि दो पेड़ आपके बेटों ने गिराया है, वो भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो भी कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ये जरूर मेरे पति ने गिराया होगा, यशोदा ये कभी संभव नहीं है, ये छोटा बेटा कभी इतने बड़े पेड़ों को उठाए गिराए। तो भगवान की जो दिव्य लीला है इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। जब पूतना और ये अनेक असुरों का भी वध हुआ तो ब्रजवासी क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे लगता है कि इस लड़के पर नारायण की खास कृपा है। और कई बार ब्रजवासी सोचते थे कहीं ये देवता तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े असुर आ रहे थे इनका वध करने के लिए और अंत में इन असुरों का वध हो जाता था और ये बच जाते थे भगवान। तो जो भगवान की योगमय शक्ति के द्वारा उनके जो साथी भी हैं वो ये पहचान नहीं पाए कि भगवान ये हैं कौन। तो भगवान ने जब इन दो वृक्षों को गिराया तो इन दो यमुनार्जुन पेड़ों से जब नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए तो उन्होंने नारद मुनि का भी गुणगान किया कि उनकी कृपा से ये संभव हो पा रहा है कि उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। और फिर उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया। तो इस श्लोक में जो संदेश दिया जा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम सबका प्रयास ये रहना चाहिए कि हम इस श्लोक के भाव को अनुकूल कर पाए। यह है असली सफलता आध्यात्मिक जीवन की। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है इस श्लोक में भक्ति की विधि का उपदेश दिया जा रहा है। तो यह क्या कहा जा रहा है, अब से हमारे वचन का हिंदी का हमारे वचन सदा आपके लीलाओं का गुणगान करे। वो कह रहे हैं अब से, तो दूसरे शब्दों में इसका ये अर्थ है कि अज्ञानता में पहले हमने गलत कार्य किए, परंतु नारद मुनि जी की कृपा से हमें परम भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है और अब से हम ये गलती फिर से हम नहीं करें। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने से पहले हम लोग ने कई गलत कार्य किए, कई बुरी संगत में थे, पर अब जब हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हुआ है, जब हमने दीक्षा ली है, ये निर्णय किया है कि हमने भगवान के शरणागत होना है, तो अब से हम सबके ये भाव क्या होना चाहिए कि हमारी वाणी के द्वारा सदा भगवान के लीलाओं का गुणगान हो। तो इस विषय पर कई स्थानों में बल दिया गया है। उदाहरण के लिए आप चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो चैतन्य महाप्रभु जी का वार्तालाप जो रामानंद रॉय के साथ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभव भट्टाचार्य का उद्धार किया, उसके पश्चात भक्तों की इजाजत लेकर दक्षिण भारत की यात्रा में गए। जैसे वो निकल रहे थे सर्वभव भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी कि आपकी यात्रा के दौरान आप एक बड़े प्रसिद्ध भक्त को मिलोगे जो भौतिक दृष्टि से राजपाल था पर वो बड़े ऊंचे कोटि का भक्त भी। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें मिले दावरी के तट पर और महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। वैसे प्रश्न हम भगवान से पूछते हैं, पर यहां आप देखते हो कि भगवान ने अपने भक्त से प्रश्न पूछे भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए। तो अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए, जिसके उत्तर में रामानंद रॉय ने कहा भगवान के नामों का लीलाओं का गुणों का वर्णन करना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कि हमारे वचन सदा आपकी लीलाओं का गुणगान करे। इसे कहा जाता है कृष्ण कथा। जब आप अपनी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करते हो तो इसे क्या कहा जाता है, कृष्ण। और जब आप अपनी वाणी के द्वारा भौतिक विषय की चर्चा करते हो इसे क्या कहा जाता है, पर। तो हम भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि हम कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाएं और भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या के विषय में चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, जीव की एक तपस्या यह है कि सदा भगवान का गुणगान करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, उनके नामों का उच्चारण करो। तो यहां नलकोर और मणिग्रीव ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो शब्द हैं सदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। और भगवान की लीलाओं की कोई सीमा है, कोई सीमा नहीं, भगवान की अनेक लीलाएं हैं। और भगवान की लीलाओं के विषय में आप ये भी जानते हो कि अब दिन रात सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति पूछते हैं क्या आप एक ही नाम का उच्चारण करते दिन रात थकते नहीं, क्या आप महाभारत महाभारत रामायण भागवत को पढ़ते हो बार बार थकते नहीं, नहीं थकते। क्यों? क्योंकि ये हैं दिव्य लीलाएं भगवान की। और ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसीलिए भागवत में कहा गया है नास्ता परेशो बद्रेशु नित्यम भगवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नहीं सकी। कि बड़े ध्यान के साथ हमें नियमित रूप से रोज क्या सुनना चाहिए? भगवत के संदेश को सुनना चाहिए। तो जीभ के द्वारा कृष्ण कथा का गुणगान होना चाहिए, जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, जीभ के द्वारा भगवान की लीलाओं का उच्चारण, जीभ के द्वारा भगवान के अनेक गुणों का उच्चारण। जैसे कि ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं, अंगने यस्य सकलेन्द्र प्रतिमन्ति, भगवान के अनेक गुणों में एक गुण ये है, किसी एक गुण इस किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। तो हम भक्तों का ये निर्णय होना चाहिए कि हमने आज से जहां तक हो सके जीव के द्वारा क्या करना है, कृष्ण कथा करना है। तो आप कहोगे पर हम तो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां क्या करें? तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्रजल्प से बचो, और जो भौतिक आवश्यकता है वो तो करना पड़ेगा, पर उससे अधिक हमें प्रजल्प से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेश में उपदेश दिया है कि भक्ति नष्ट हो सकती है, और इस विषय में क्या कहते हैं, अत्याहारा प्रयस प्रजल्प यमांग। तो प्रजल्प से भक्ति कमजोर हो जाती है, और कृष्ण कथा से भक्ति आगे बढ़ती है। आगे क्या कहें, हमारे जो कान हैं सदा आपके गुणगान को सुने। तो अगर जीभ का उपयोग होगा भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में, तो कानों द्वारा भी यही श्रवणम होगा। और अगर जीभ के द्वारा भौतिक विषय की चर्चा करें तो कानों में भी वही विषय सुनने में आएगा। तो यहां ये कहा जा रहा है कि वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करें और कानों के द्वारा भगवान की महिमा को सुने। तो भक्तों का यह भाव रहना चाहिए कि हम दिन रात क्या भगवान की महिमा को सुने। आगे कहते हैं, हमारे हाथ पांव और अनेक इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में ही जुड़े रहे हैं। तो ये हमारा एक और भाव होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो अनेक अंग हैं, हाथ हैं, पांव हैं इत्यादि, इनका उपयोग होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के कार्य में। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश है जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया, भगवान के शरणगत होने के विषय में, जिसे आप मध्य लीला के 22वें अध्याय में पढ़ते हो। तो इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के शरणगत होने के विषय में कहा कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, तो ये और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भी कीमत भरनी पड़े, कृष्ण भक्ति रास भाविता बते क्रियोतो में अधिक को भी लापते, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को किसी हालत में भी फिसलने मत दो। तो यहां ये कहा जा रहा है कि हमारे हाथ पैर और अनेक इंद्रियों द्वारा हम वही कार्य करें जिसके द्वारा हम आपको संतुष्ट कर सके। तो हम सब भक्तों का ये भाव होना चाहिए। आप अमरीश महाराज का उदाहरण पढ़ते हो, वो अपने पैरों का उपयोग करते थे क्या भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, अपने हाथों का उपयोग करते थे किस लिए, भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं उनके सारे साथी खुद पांव हाथ से घसीर रगड़ रहे थे मैल निकालने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर देखते थे कि हर भक्त कितनी मैल को इकट्ठा कर रहा है, और जो कम करते थे उन्हें कहते थे उनसे शिक्षा लो जो कि ज्यादा मैल को इकट्ठा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा रथ यात्रा के समय महाराज प्रताप रुद्र जो राजा थे, पर राजा होते हुए भी बड़ा निम्रता की का भाव था, बड़ी तुच्छ सेवा कर रहे थे. क्या पूरे रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रास्ते को धो रहे थे गुलाब के पानी के साथ, उससे पहले सोने के झाड़ू से उसे साफ कर रहे थे. तो जब महाप्रभु ने देखा कि राजा होते हुए इतनी विनम्रता की सेवा कर रहा है, तो उन्होंने क्या उन्हें खास दर्शन दिया जिसके द्वारा उनकी अद्भुत लीला को देख पाए. जब परम भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग अवतारों में, तो अपनी अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं. जैसे रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने 7 कीर्तन मंडलियों को जोड़ा था हर रथ के साथ, वो चैतन्य महाप्रभु जी अपना विस्तार करके 7 के 7 कीर्तन मंडलियों में एक साथ उपस्थित थे. और ये खास दर्शन केवल कुछ भक्तों को प्राप्त हुआ, जिनमें एक थे महाराज प्रतापपुत्र. और महाप्रभु उनसे क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो राजा होते हुए पैरों के पांव हाथों के द्वारा बड़ी विनम्रता की सेवा कर रहे हैं. क्या उस रास्ते को साफ कर रहे हैं जिसमें भगवान का रथ निकलेगा. तो यहाँ नलकुंवर और मणिग्रीव हम भक्तों को बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं. कह रहे हैं क्या अपने हाथ पांव और एक अनेक इंद्रियां, नेत्र, नेत्र द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान के सुंदर आचार विग्रह का दर्शन प्राप्त करना चाहिए. और दूसरे शब्द में अगर हम इन इंद्रियों का उपयोग करें भगवान की सेवा में, तो आध्यात्मिक जीवन सफल होता है. और जब हम इनका उपयोग करें भौतिक कार्यों में, तो आध्यात्मिक जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे. आगे वो क्या कहते हैं, हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे. तो इस विषय में आप अनेक श्लोकों को प्राप्त करते हो शास्त्र में, जिसमें यह कहा जाता है क्या मन द्वारा क्या करना चाहिए हमें, सदा भगवान का चिंतन. और अगर हम मन का सदुपयोग करें तो आप दूसरे इंद्रियों को भी वश में ला सकते हो. और गीता में भगवान क्या कहते हैं इस विषय में, मन मन भाव मद भक्तो मद याजी मनम नमस्कार मां में वाचित सत्यम देव प्रति जने पियोषण. भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी हमें अनेक नियम दे रहे हैं. और अंत में वो रूप गोस्वामी कहते हैं इन सब नियमों का मूल उपदेश क्या है, कि आप सदा भगवान का स्मरण करो तो कभी उनको भूलो नहीं. तो यहां भी हमें उपदेश दिया जा रहा है कि हमारे मन के द्वारा सदा आपके ही चरण कमलों का स्मरण हम करें. तो ये हम सब भक्तों का प्रयास रहना चाहिए. तो इस विषय में रामनंदन रॉय ने हमें क्या उपदेश दिया, एक भगवान के नामों का स्मरण करो. भगवान के नामों का स्मरण का अर्थ है भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों में किस प्रकार की शक्ति है, फिर भगवान की लीलाओं का, भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भगवान के गुणों का, आगे भगवान के उपदेश का. आप भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी अर्जुन बड़े दुखी थे. फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया. जैसे ही उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, उन्हें क्या महसूस हुआ, जैसे भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं. उनकी उदासी, शोक इत्यादि सब समाप्त हो गया. तो प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं तात्पर्य में कि उसी प्रकार से हम भक्तों को सदा गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए. गीता के संदेश में और भगवान में कोई अंतर है नहीं. हर श्लोक के साथ क्या कहा जाता है, श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं. तो यहां हमें उपदेश दिया जा रहा है क्या, कि हमारा जो मन है सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करें. तो कई बार भक्त कहते हैं मन को वश में लाना बड़ा कठिन है, कठिन है पर संभव नहीं। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए आध्यात्मिक जीवन सरल हो जाता है। और अगर हम मन को वश में लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन कठिन हो जाएगा। और अगर ध्यान पूर्वक श्रवणम कीर्तनम हो तो विष्णु स्मरणम, जिसका अर्थ है भगवान का चिंतन करना, वो सफल हो पाएगा। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, अंते नारायण स्मृति, कि इस प्रकार की योजना होनी चाहिए कि अंत में आप भगवान का स्मरण कर सको। और गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवम, जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। और भगवत में पांचवें स्कंद में इस विषय में आपको भारत महाराज की कथा प्राप्त होती है, जिसमें आप पढ़ते हो कि भारत महाराज का मन कहाँ था मृत्यु के समय, एक हिरण के प्रति, और उन्हें हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। तो बड़े ध्यान से प्रयास करना चाहिए कि मन द्वारा सदा आपके चरण कमलों का स्मरण हो। आगे क्या कहते हैं, हम हर चीज का उपयोग करें आपके सेवा में, क्योंकि हर वस्तु प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ संक्षेप में यह है कि हम हर वस्तु का उपयोग करें किस लिए, भगवान की सेवा में। यह है सदुपयोग। और आगे हमारी जो आंखें हैं सदा वैष्णव का दर्शन प्राप्त करें, जो कि आपसे अभिन्न है। तो भक्तों का यह भाव होना चाहिए कि हम वैष्णव की संगत में रहे। कई बार सुनने में आता है भक्त कहते हैं अब भगवान की सेवा करेंगे पर दूसरों की नहीं। भगवान भक्तों से अभिन्न है। और भगवान के भक्तों का क्या लक्षण है कि उनके मन में यही भाव रहता है कि सबको जोड़ा जाए भगवान की सेवा में। तो दूसरे शब्दों में यहां हमें उपदेश दिया जा रहा है कि हमें वैष्णव की संगत में रहना चाहिए, और ये प्रयास रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने रामनंद रॉय से पूछा कि इस विश्व में सबसे कठिन स्थिति क्या है भक्त के लिए। और रामनंद रॉय ने कहा सबसे कठिन स्थिति है भक्तों की संगत से जुदा हो जाना। और भक्तों की संगत से जुदा होने के द्वारा जो कष्ट आता है उसको कोई सह नहीं सकता। जैसे कई बार आप कहते हो अनबेरेबल पेन, बड़ी गहरी दर्द है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रामनंद रॉय ने कहा कि भक्तों के लिए भक्तों की संगत से जुदा हो जाना ये सबसे गहरी दर्द का सबसे गहरा कष्ट है, भक्तों की संगत से दूर हो जाना। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा व्हाट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, सबसे शुभ क्या कार्य है। और रामनंद रॉय ने कहा सदा भक्तों की संगत में रहना। तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि सबसे शुभ कार्य है सदा भक्तों की संगत में रहना, और दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि भक्तों के लिए सबसे कष्ट की क्या स्थिति है कि भक्तों की संगत से जुदा होना। तो दूसरे शब्दों में इन दोनों श्लोकों के द्वारा एक ही संदेश दिया जा रहा है कि हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संगत में रहे। और प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा है कि हम सबका यह भाव होना चाहिए क्या कि हम भक्तों के गुणों को देखें और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाए। रूप गोस्वामी जी भक्ति उपदेशमृत में कहते हैं ददाति प्रज्ञाति गुह्य मकति प्रचति मुनक्ते बजाते चैव सद विधि प्रीति लक्षण। रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार का संबंध जोड़ सकते हैं भक्तों के साथ। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना हुई है किस लिए, ये छह प्रकार के जो संबंध है उसकी सुविधा देने पैदा करने के लिए। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए सदा कि हम भक्तों की संगत में रहें, और भक्तों की संगत में रहें और किस विषय की चर्चा होनी चाहिए, कृष्ण भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके रूप का, उनके उपदेश का, उनके नामों के विषय में। और अगर हम सदा यह प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो जाए उसे मैं दूर करता हूं। तो इस समय हम भगवान के अनेक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो संक्षेप में सुदामा ब्राह्मण की लीला का भी वर्णन करना चाहता हूं। ये भागवतम के भागवत में सुदामा ब्राह्मण ने कहा, मैं कौन हूं, हु एम आई, अ सिंफुल पुअर फ्रेंड ऑफ अ ब्राह्मणा, एंड हु इज कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एक्ट, फुल ऑफ सिक्स ऑपोनेंसेस, नॉनदलेस ही हैज एम्ब्रेस्ड मी विद हिज टू आर्म्स। तो सुदामा ब्राह्मण की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। सुदामा ब्राह्मण भगवान के मित्र थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, ये नहीं कि दूसरों को दोष देते रहना। बहुत एक स्थिति में हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, पर सुदामा ब्राह्मण बिल्कुल भौतिक दृष्टि से बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि खाने के लिए भी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा मिलता था, और उनकी पत्नी में इतनी त्याग की भावना थी कि वो पहले अपने पति को खिलाती थी और फिर अगर कुछ बच जाए थोड़ा खाने के लिए तो खुद खाती थी, नहीं तो भूखी रहती थी। और श्रीरामा ब्राह्मण फटे हुए कपड़ों को पहनते थे और इतने कमजोर थे क्योंकि जो नाड़ियां हैं वो भी दिख रही थी, जब खुराक कमजोर हो तो। पर वो संतुष्ट थे बिल्कुल, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं। वो एक संसार में चाहे कितनी भी सुविधा आपको प राप्त हो जाए, आपको लगता है कि एक कम है, और प्राप्त होना चाहिए, और प्राप्त होना चाहिए, कि नहीं। तो सुदामा ब्राह्मण की जो पत्नी है उन्हें पता था कि मेरे पति के एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं जो राजा हैं, बड़े धनी हैं, और कहां रहते हैं, द्वारका में। तो ये कथा आप दो अध्यायों में प्राप्त करते हो भागवतम के दसवें स्कंद में। तो पत्नी ने पति से कहा, तुम जाओ अपने गणेश अपने मित्र को मिलने के लिए। ऐसा सुदामा ब्राह्मण के मन में बिल्कुल भाव नहीं था कि किसी प्रकार की सुविधा मांगी जाए, पर जब उनकी पत्नी ने इतना कहा कि जाओ जाओ अपने गणेश मित्र को जाकर मिलो, तो उनके मन में यह भाव आया, चलो मैं जाकर अपने कृष्णा को मिलू। उनके मन में भाव आया, चलो मैं चलता हूं उनको मिलने के लिए। तो खुशी के साथ वो आगे बढ़े, अपने मित्र को द्वारका में मिलने के लिए। पर घर से निकलने से पहले उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, कुछ है, कोई भेंट है जो मैं अपने मित्र को दे सकूं। तो उनकी घर की स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसकी पत्नी को पड़ोस के घरों से मांगना पड़ा, ब्राह्मणों पड़ोस के ब्राह्मणों से मांगना पड़ा, क्या चूड़ा पपावा के, तो थोड़ा सा वो चूड़ा मांगा। और सुदामा ब्राह्मण ने अपनी धोती में उसे जोड़ दिया वो एक लपेट कर, और भागे बड़े आगे द्वारका में, द्वारका की ओर। पूरे रास्ते में वो यही सोच रहे थे कि मैं कैसे मिलूंगा अपने मित्र के साथ, मैं इतना गरीब हूं फटे हुए कपड़े मैंने पहने हैं, मुझे तो शायद चौकीदार अंदर भी जाने नहीं देंगे। आखिर उनके मित्र थे महल में रह रहे थे और उनको चिंता थी कि मुझे तो अंदर जाने भी नहीं देंगे। यही विचार करते हुए आगे बढ़े और जब वो पहुंचे द्वारका में, उन्हें इतना आनंद, ऐसा लगा कि जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और फिर भगवान को मिलने गए, किसके आश्रम में? रुक्मिणी के। भगवान उस समय रुक्मिणी के महल में थे। भगवान की अलग अलग पत्नियों के सबके अलग अलग महल थे। कई साल पहले से भारत सरकार के एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि द्वारका में एक समय हजारों महल थे, तो इसका प्रमाण भी है। तो अलग अलग पत्नियों के हर एक का अलग अलग महल था। तो भगवान उस वक्त कहां थे? रुक्मिणी के महल में। तो भगवान ने जब सुदामा ब्राह्मण को आते हुए देखा तो एकदम बिस्तर से उठ गए। भगवान ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी कि ब्राह्मणों का स्वागत कैसे होना चाहिए। समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है किसके साथ? सिर के साथ। और ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है कि शास्त्र के आधार पर जीवन बिताएं। भागवत गीता में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है। वो ब्राह्मण में लालच नहीं रहता। आप पढ़ते हो कि भगवान राम ने ब्राह्मणों से पूछा कितनी जमीन चाहिए, क्या धन चाहिए, जो चाहिए मांगो। उन्होंने उतना ही लिया, कहा कि जितना आवश्यक है उतना ही दीजिए और ज्यादा नहीं। भगवान राम ने अपने सारे गहने वगैरह दे दिए थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार करके सब सीता और राम को वापस लौटा दिया। ये है ब्राह्मणों का भाव। तो ब्राह्मणों को होना आवश्यक है। और भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को अपने बिस्तर में बिठाकर उनके चरण धोए। चरण धोकर पानी भी अपने सिर पर डाला। तो भगवान ने बड़े आदर के साथ सुदामा ब्राह्मण का स्वागत किया और दोनों ने अपने बचपन की लीलाओं का स्मरण किया। दोनों किसके आश्रम में थे? संदीपनि मुनि के आश्रम में। और किस प्रकार उन्होंने संदीपनि मुनि की सेवा की थी, किस प्रकार संदीपनि मुनि ने उन्हें बड़े कठिन कार्य को निभाने के लिए भेजा था, तो कैसे वो सफलता से निभा पाए। तो इस प्रकार चर्चा हुई। फिर भगवान ने पूछा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ सुदामा, कुछ लाए हो मेरे लिए? तो सुदामा बड़े हिचकते हुए उन्होंने थोड़ा सा वो चूड़ा दे दिया जो भगवान ने खाया। भगवान ने एक बार चखा ही था, जब दूसरी बार चखने गए तो रुक्मिणी ने रोक दिया, कहा एक बस है, एक बार हो गया बस, तो हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। और जब भगवान को आप एक दाना भी दो तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक बड़ी अच्छी कथा है जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि अब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि का बड़ी अच्छी स्वागत की थी। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने पूछा कुछ मैं कर सकता हूं इसके बदले में? तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे भाई उद्देश्य के घर में भी आप पहुंच जाओ। पर उन्होंने कहा कि उस समय पहुंचना जब उन्होंने भोजन कर लिया हो उसके पश्चात, क्योंकि जब पांडव भाई जा रहे थे जंगल में तो उन्हें खास वर प्राप्त हुआ था, एक अक्षय पत्र की सुविधा प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा अब हजारों क्या लाखों ब्राह्मणों को भी भोजन खिला सकते थे। पर एक बार द्रौपदी ने खा लिया उसके बाद अगले दिन तक कुछ भोजन की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो दुर्योधन का भाव था क्या कि वो ऐसे समय पहुंचे जब कोई सुविधा नहीं हो भोजन की तो दुर्वासा मुनि सरलता से खुश होते हैं, सरलता से क्रोधित, तो उनको श्राप देंगे जो उनकी इच्छाएं। तो जब वो दुर्वासा मुनि पहुंचे उनके घर में, उनकी कुटिया में, तो द्रौपदी ने कहा अब तो कुछ है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रबंध करो 10,000 भक्तों के लिए भोजन का। पर द्रौपदी ने कहा हमारे घर में कुछ है ही नहीं, अब कैसे कैसे योजना करें। तो उसी समय भगवान वहां पहुंच गए और भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं, घर में है ही नहीं कुछ खाने के लिए। उन्होंने कहा मुझे रसोई में जाकर देखने दो कुछ है या नहीं। जब रसोई में गए तो एक बर्तन में क्या था, एक दाना बस। उसको खाने से ही सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। उल्टा जब दुर्वासा मुनि उनके शिष्य स्नान कर रहे थे, उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि उन्होंने उनका पेट एकदम भर गया है और सबको अचकी आने लगे। फिर वो सब समझ गए यह भगवान के कोई खास लीला है। तो रुक्मिणी ने कहा कि आपने खा लिया छोड़ा भी, हमें और दूसरे सेवकों को बांटने दो। खैर सुदामा ब्राह्मण वापस लौटे, घर की ओर वापस आ रहे थे, बड़े खुश थे अपने मित्र को मिलकर। और रास्ते में यही सोच रहे थे कितना आनंद आया मुझे, कैसे कृष्ण ने मेरा स्वागत किया, कितने आदर के साथ मेरा स्वागत किया, मुझे बिठाया, चरण धोए और इतनी इज्जत दी। और ये जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें क्या कह रहे हैं, जब सुदामा ब्राह्मण अपनी कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो कुटिया महल बन गई है। जब वो लौट रहे थे यही सोच रहे थे कि मैं अपने घनिष्ठ मित्र को मिला, कितना आनंद आया, कितनी इज्जत से उन्होंने मेरा स्वागत किया। पर इसके अलावा और उन्होंने कुछ मांगा नहीं कृष्ण, वो गए थे इस इच्छा के साथ कि कुछ शायद मांगे। पर जब वो अपने भक्त मित्र के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, तो यही सोच रहे थे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो कुटिया थी वो क्या बन गई थी, महल बन गई थी। रास्ते में वो ये भी सोच रहे थे ये भगवान ने मुझे ये धन की सुविधा नहीं दी, क्योंकि धन प्राप्त हो जाए तो हम घमंडी हो जाते हैं, भगवान को भूल भी जाते हैं, ऐसे ही सोच रहे थे। और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि वो कुटिया महल बन गई है। फिर उन्होंने ये प्रार्थना की, इस श्लोक की रचना की कि मैं हूं कौन, मैं तो एक गरीब दोस्त हूं, किसका, परम भगवान का। और मैं कौन हूं, मैं पापी हूं। तो वो अपने आप को दोष दे रहे हैं, ये नहीं कि ब्राह्मण दूसरों को दोष देता है। वो कह रहे मैं गरीब हूं क्यों, मेरे पापों के कारण। जैसे कई बार कोई असुविधा आए तो भगवान को दोष देने की कोशिश करते हैं, पर यहां सुदामा ब्राह्मण अपने आप को खुद ही दोष दे रहा है। वो कह रहे हैं कौन मैं, कौन हूं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, पापों के कारण गरीब हूं, और किसका हूं, कृष्णा का मित्र हूं जो कि परम भगवान है। और हालांकि वो परम भगवान है और मैं गरीब ब्राह्मण हूं, जब भी उन्होंने मुझे गले लगाया, जब भी उन्होंने मेरे चरण धोए, जब भी उन्होंने मुझे इतना आदर दिया। तो फिर जब सुदामा ब्राह्मण ने देखा कि उनकी कुटिया महल बन गई है, उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत बन गई है, इतने सेवक उनके घर में पहुंच गए हैं, तो फिर सुदामा ब्राह्मण समझ पाए क्या कि ये सब प्राप्त हुआ है किसकी सुविधा से, उनके घनिष्ठ मित्र कृष्णा की सुविधा से। तो भागवतम की समाप्ति में ये कहा गया है इस अध्याय के कि जो व्यक्ति बड़े ध्यान से इस सुदामा ब्राह्मण की कथा पढ़ेगा और सुनेगा तो उसके हृदय में क्या आएगा, भगवत प्रेम आएगा। तो वैसे तो सुदामा ब्राह्मणों की कथा हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर जब भी इन लीलाओं में इतनी दिव्य शक्ति है कि अब दिन रात सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। तो आज हमने संक्षेप में इन दो लीलाओं का वर्णन किया। भगवान की लीलाओं की कोई सीमा है नहीं। और हमारे लिए कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की लीलाएं हैं। तो हमें किसी प्रकार से ऐसी योजना करनी चाहिए कि हम हमेशा आध्यात्मिक कार्यों में जुड़े रहें, मन द्वारा सदा भगवान का चिंतन करें। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, ये है भक्ति की विधि जो उपदेश इस श्लोक में दिया गया था। तो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए। और अगर आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता भी प्राप्त कर सकोगे। और अगर हम ध्यान से यह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो बड़े तो फिर आवश्यक है कि आप विष्णु स्मरण भी कर पाओगे। और अगर श्रवणम कीर्तनम कमजोर रहेगा तो विष्णु स्मरणम भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भक्ति प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं नारद पंचरत्न के उस श्लोक का वर्णन करते हुए, जिसमें नारद मुनि क्या कहते हैं, ऋषिकिन सेवनम भक्ति उच्चते, कि हमें मन बुद्धि इंद्रियों का सदा उपयोग करना चाहिए। किस में? भगवान की सेवा में। तो ये रहना चाहिए हम सबका प्रयास। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें भगवान की लीलाओं, भगवान के उपदेश, भगवान के गुणगान में रुचि बढ़ानी चाहिए। और इसके द्वारा आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकोगे। और आप भागवतम में पढ़ते हो कि भगवान के प्रकट होने से पहले उनके भाई बालराम प्रकट हुए थे, और उनसे पहले 6 असुर भाई प्रकट हुए थे जिनका वध हो गया था। तो हमारे आचार्यों ने कहा है ये जो 6 असुर थे ये हैं हमारे अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। जब आप इन 6 असुरों का वध करोगे तो ही कृष्ण भगवान आपके हृदय में बैठेंगे। अगर आप इन असुरों से प्रेम रखना चाहते हो तो फिर कृष्ण भगवान हृदय में नहीं बैठेंगे। तो हम सबको ये भी निर्णय करना चाहिए कि इन असुरों का हमने वध करना है। ये संभव है भक्ति योग के माध्यम से। तो अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे ये असुरों का वध होगा और अंत में आप भागवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्यादा देर हो गई है, कल सब आओगे इधर? ओके। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।